हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। रात का समय। रात का खाना खाने के बाद वसुंधरा ऐसे ही महल में टहल रही है और चंद्रिका भी उसके साथ नहीं है, क्योंकि वो किसी काम में लगी हुई थी और वसुंधरा ने भी पता नहीं क्यों उसे अपने साथ आने के लिए ज्यादा जोर नहीं दिया और वो वीरेश के साथ खुद ही महल के इस हिस्से में घूमने के लिए आ गई। वीरेश के साथ चलते हुए वसुंधरा बीच बीच में उसकी तरफ ही देख रही है, लेकिन वीरेश हमेशा की तरह सामने देख रहा है और उसका ध्यान चारों तरफ था। वो एकदम चौकन्ना था, क्योंकि पिछली बार की तरह वो कोई गलती नहीं करना चाहता और ना ही ये चाहता था कि किसी को भी कोई मौका मिले। वसुंधरा के मन में पता नहीं क्यों उसे लेकर बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन वीरेश इस बार तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहता था। वसुंधरा उसके लिए सिर्फ राजकुमारी है जिसकी जान बचाना है, अभी उसकी जिंदगी का सबसे अहम मकसद है। इस तरह चलते हुए वसुंधरा महल के आखिर में उस कमरे के सामने जाकर रुक गई जहां पर वो हमेशा ही रात के वक्त ही जाती है, और उसे वो कमरा जैसे अपनी तरफ खींचता है या फिर बुलाता है। उसने उसके बारे में जब भी अपनी माँ या पिता किसी से भी पूछा है तो उसे कोई सही जवाब नहीं मिला, इसलिए वो बार बार उसके अंदर जाकर ही अपने जवाब ढूंढने की कोशिश करती थी। बचपन से लेकर आज तक उसे वहां उस कमरे में बहुत सुकून मिलता है, और जब भी वो किसी बात को लेकर बेचैन होती है, जैसे अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए वहां पर ही चली जाती थी। राजकुमारी, ये कमरा किसका है और आप यहां पर क्यों आई है? वो भी इस वक्त। वीरेश को पता नहीं क्यों उसे कमरे के आसपास कुछ बहुत ही अजीब सा महसूस हुआ। ये भी हमारा ही कमरा है, आओ हम तुम्हें इसे अंदर से दिखाते हैं। वसुंधरा ने वीरेश का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और वो उसका हाथ पकड़ने ही वाली थी, तभी वीरेश ने अपना हाथ पीछे कर लिया और वो खुद ही उसके पीछे चलता हुआ कमरे के दरवाजे के करीब ही आ गया। दरवाजे के एकदम सामने आकर वीरेश ने उस दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, आपका कमरा? लेकिन ये आपका कमरा कैसे हो सकता है? आपका कमरा तो दूसरा है राजकुमारी, आप फिर से मुझसे झूठ बोल रही है ना? लेकिन इस बार मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगा। वसुंधरा ने तुरंत ही सफाई देने वाले अंदाज में कहा, नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये सच में हमारा कमरा है। मतलब हम यहाँ पर रहते नहीं, लेकिन फिर भी ये कमरा हमें बहुत अपना सा लगता है और पूरे महल में हमारे लिए सबसे खास है ये कमरा, क्योंकि अपने कमरे के बाद सबसे ज्यादा समय हमने यहाँ पर ही बताया है। हमें यहाँ पर एक अलग सा सुकून मिलता है, और जब हमारे पास कोई भी नहीं होता बात करने के लिए, तब हम यहाँ पर ही आ जाते थे और हमें ऐसा लगता था जैसे यहाँ पर कोई हमारी सारी बातें सुन रहा है। ये सारी बातें बताते हुए वसुंधरा की आंखों में एक अलग ही चमक नजर आ रही है और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट भी है। वीरेश अभी भी उसकी कही बातें समझने की कोशिश कर रहा है। उसे इस तरह चुपचाप खड़ा देखकर वसुंधरा ने आखिर उसका हाथ पकड़कर दरवाजे पर रखते हुए कहा, चलो ना अंदर, वैसे भी हम कोई नियम नहीं तोड़ रहे, ये कमरा तो राजमहल के अंदर ही है ना, और हमें बाहर जाने से मना किया है पिताजी और रानी माँ ने। उन दोनों ने एक साथ ही उस दरवाजे पर अपना एक एक हाथ रखा और फिर अंदर की तरफ हल्का सा धक्का देते हुए उसे दरवाजे को खोल दिया, और वो दरवाजा भी अंदर की तरफ होते हुए काफी आसानी से खुल गया। वो कमरा खुलते ही वीरेश वसुंधरा से पहले उसे कमरे के अंदर आया, क्योंकि वो पूरी तरह से ये सुनिश्चित करना चाहता था कि वहां पर वसुंधरा के लिए कोई खतरा तो नहीं है। उसने वसुंधरा को बाहर ही रुकने के लिए कहा, लेकिन वसुंधरा ने उसकी बात नहीं सुनी और वो भी तुरंत ही वीरेश के साथ ही वहां कमरे के अंदर आ गई। और वीरेश ने चारों तरफ देखा तो वो भी राजमहल के एक साधारण कमरे की तरह ही लग रहा था, लेकिन बाकी कमरों से बहुत ही ज्यादा, लगभग चार गुना बड़ा था, और उसकी छत बहुत ही ऊंची थी और थोड़ा सा पुराने जमाने का बना हुआ लग रहा था। बाकी महल के कमरों से कुछ अलग थी उसकी बनावट, लेकिन क्या ये उसे समझ नहीं आ रहा था। इसके अलावा उस कमरे की चारों दीवारें एकदम बंद थी, महल से बाहर झांक कर देखने वाली एक भी खिड़की वहां पर नजर नहीं आ रही है। वहां पर बहुत ही काम सामान रखा हुआ नजर आ रहा है, जिसमें से ज्यादातर बड़े बड़े से सफेद कपड़ों से ढका हुआ है, जिससे कि किसी को भी सामने से देखने पर यह पता न चले कि उन सफेद कपड़ों के नीचे ढका हुआ सामान आखिर क्या है। वीरेश इतने दिनों में पहली बार ही उस कमरे के अंदर आया, इसलिए वो अभी भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वहां पर सच में ऐसा कुछ गलत है या फिर उसे ही ऐसा महसूस हो रहा है। वो ज्यादातर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों शक्तियों को आसानी से महसूस कर लेता है, लेकिन अभी उसे समझ नहीं आ रहा है कि वहां पर जो है वो गलत है या फिर सही। वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही है। वो जल्दी से भागते हुए उस कमरे के एक कोने में गई और एक बड़ी से ऊंचे से सामान पर से उसने वो सफेद कपड़ा खींचकर नीचे गिरा दिया और वहां पर उसके सामने एक बहुत ही बड़ा सा आदमकद और खूबसूरत सा आईना नजर आया। वसुंधरा जाकर उस आईने के सामने खड़ी हो गई और वो उस आईने में देखी हुई मुस्कुरा रही थी, जिसमें उसे अपना अक्स नजर आ रहा था। लेकिन उसके अलावा वसुंधरा को उसमें कुछ और भी नजर आ रहा था, जिसे देखकर वो खुश हो रही थी। वीरेश ने वो आईना देखा, जो कि बिल्कुल भी पुराना नहीं लग रहा है बाकी सामान की तरह, और ऐसा लग रहा है जैसे कि उस आईने की रोज ही साफ सफाई होती है, क्योंकि उस पर जरा सी भी धूल मिट्टी नहीं थी और उसे कमरे में बिना किसी रोशनी के भी उसे शीशे की चमक काफी तेज थी। कहानी जारी रहेगी।